मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं सी सेट के कुछ अलग तरह के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले जो दो समाचार हैं वे आपको बताना मैं जरूरी समझ रहा हूं। एक शब्द जो पिछले 3-4 दिनों से अखबारों में आ रहा है और खासकर कल के रेडियो न्यूज में भी उसे स्थान मिला है, वह शब्द है पंडोरा पेपर्स, PANDORA, पेंडोरा पेपर्स। थोड़ा सा जान लें कि यह क्या है। यदि आप थोड़े लंबे समय से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे तो 2015 में शब्द आया था HSBC डेटा लीक, मतलब निकलना बाहर आ जाना। लेकिन इससे अगर आप परिचित नहीं भी होंगे तो 2016 में पनामा पेपर्स की बात खूब उठी थी, खूब हलचल मची थी और अभी तक ये चर्चा में आ जाती है, पनामा पेपर्स की बात। इसके बाद 2017 में आया था पैराडाइज पेपर्स और ठीक अब आया है पेंडोरा पेपर्स। ये पेंडोरा पेपर्स क्या है? कुछ नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स, ICIG, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स। बेसिकली एक नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, है ना, खोजी पत्रकारिता वालों का। ये ग्लोबल वैश्विक स्तर का नेटवर्क है और इससे 280 जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, लगभग 100 मीडिया जुड़े हुए हैं और ये 100 देशों में अपना काम कर रहा है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह है वाशिंगटन DC में। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह लीजिए खोजी पत्रकारिता वालों का ऑर्गेनाइजेशन है। इसने अभी कुछ पेपर्स हासिल किए हैं और उन पेपर्स की संख्या है, आप सोचकर शायद चौंक जाएंगे, लगभग 1.2 करोड़, इंग्लिश में लिखा जाता है 12 मिलियंस पेपर्स इसके पास हैं। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, जो बहुत ही गोपनीय होने चाहिए लेकिन इनके हाथ लग गए हैं, तो इसे कह दिया आप डेटा लीक हो गया है। इसके बारे में अब पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप कह लीजिए कि चर्चा हो रही है, क्योंकि इनमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। दरअसल इसका जो संबंध है, आपने टैक्स हेवन्स कंट्री सुना होगा, टैक्स हेवन्स कंट्री या कह लीजिए हेवन्स कंट्रीज भी कह दिया जाता है। इसका मतलब है कि जब आप वहां कोई लाभ कमाते हैं या पैसा जमा करते हैं, आपको अर्निंग होती है, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, तो टैक्स हेवन कंट्रीज वो कहलाती हैं। तो ठीक है, वहां तो आपको ये फायदा मिल जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, इसका इस्तेमाल अपने अपने देशों में टैक्स को बचाने के लिए, छिपाने के लिए करते हैं। तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं, जिसमें कुछ भारतीयों के भी नाम हैं, अखबारों में आपने पढ़ा होगा। तो सरकार ने अब ये घोषणा की है कि सरकार इसकी जांच कराएगी। कल के न्यूज में ये बात थी, रेडियो न्यूज में, तब फिर मुझे लगा कि नहीं, अब ये चूंकि हमारे भी देश में इसके बारे में घोषणा हो चुकी है तो ये जनरल स्टडीज का एक छोटा सा हिस्सा तो बनता ही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये है पेंडोरा पेपर्स, है ना। आगे अगर कुछ और बात बढ़ेगी तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो समाचार है वो जानते हैं आपकी, नोबेल प्राइज डिक्लेयर होने शुरू हो गए हैं, मेडिसिन के प्राइज डिक्लेयर कर दिए गए हैं। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक हैं, संयुक्त रूप से इन्हें मिला है। उनमें से एक का नाम है डेविड जूलियस और दूसरे का नाम है आर्डेम पटापोटियन। ये 2 वैज्ञानिक हैं। कभी कभी किस विषय के लिए मिला इस पर पूछ लिया जाता है। देखिए, अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगभग बंद से हो गए हैं, लेकिन स्टेट सिविल सर्विस में या दूसरे जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उनमें पूछे जाने की संभावना रहती है, तो इसलिए इसे मैंने यहां लिया है और हम आगे भी जो नोबेल प्राइज मिलते रहेंगे उनकी इसी तरह से चर्चा करेंगे। इनको जो ये प्राइज दिया गया है, इस रिसर्च के लिए दिया गया है कि जो हम तापमान और स्पर्श का अनुभव करते हैं, जो हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं तापमान और स्पर्श का अनुभव कराने वाले, उनकी इन्होंने खोज की है। और ये माना जा रहा है कि इस खोज से जो मेडिकल साइंस है उसे आगे चलकर बहुत अधिक मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण समाचार थे। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। दोस्तों, सी सेट के लिए अभी वक्त बाकी है और हम अंतिम समय तक, अंतिम क्षणों तक इसके लिए संघर्ष करेंगे। परिच्छेद को लेकर के मैंने आप लोगों से बहुत सी बातें की हैं और मुझे लगता है, जैसा कि आपके मेल से मुझे एहसास हो रहा है, कि इससे आप लोगों को बहुत लाभ हुआ है। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ और इस तरह के जो प्रश्न होते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊं। तो अब जो दूसरे प्रश्न मुझे ऐसे लग रहे हैं जिन्हें आप हल कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़ी सी जद्दोजहद करके, और अपने को सी सेट में सुरक्षित कर सकते हैं, तो उन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो अभी फिलहाल जो मैंने क्वेश्चन चुना है दोस्तों, वो मेरे पास डी सेट का पेपर है और उसका है क्वेश्चन नंबर 16। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि सी सेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़े से अटपटे किस्म के होते हैं। अटपटे इसलिए होते हैं क्योंकि हम डेली इस तरह के प्रश्नों से नहीं गुजरते, इस तरह की भाषा के संपर्क में नहीं आते, तो हमें अटपटे से लगते हैं। जो लगातार ये सब करते रहते हैं उन्हें अटपटा सा कुछ नहीं लगता। तो पहली बात तो ये कि प्रश्न पढ़ने पर आपको अटपटापन लगेगा, तो प्लीज डिमोरलाइज मत होइए, इत्मीनान रखिए। वो जनरल स्टडीज का हिस्सा है और आपके तार्किकता का हिस्सा है, सिंपल मैथमेटिक्स का हिस्सा है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड तो होगा। सरल सरल तो नहीं पूछेंगे बिल्कुल कि एक चीज 10 रुपए में खरीदी और 12 रुपए में बेच दी तो उसे कितने रुपए का फायदा हुआ। कुछ ना कुछ तो उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे ही बनाएंगे। तो बस आप ध्यान रखिए कि मुझे इत्मीनान के साथ इसे पढ़ना है, निरुत्साहित नहीं होना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और मुझे हल करना है। पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर था उसमें कथनों को लेकर के काफी क्वेश्चंस पूछे गए। कथन, क्या कथन है, अब इस प्रश्न के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, तीन कथन S1, S2 और S3 नीचे दिए गए हैं। S यानी कि स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 नीचे दिए गए हैं, और इसके बाद जिसके उपरांत एक प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया है, राइट। अब जब मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा तो आप घबराने से लगेंगे कि यार ये क्या मतलब है, दिमाग जैसे कि चकरा रहा हो, है ना। लेकिन यही आपको थोड़ा सतर्क रहना है। स्टेटमेंट केवल आपको उलझाने के लिए होते हैं, होते बड़े सरल से हैं, लेकिन कहने का ढंग इनका थोड़ा सा जटिल होता है और जानबूझकर ऐसा करते हैं। तो देखिए, स्टेटमेंट 1 क्या है, सी कॉमा है डी से छोटा पर ए और बी से बड़ा है, ठीक है। चलिए, सी जो है वो डी से तो छोटा है पर ए बी से बड़ा है। देखिए, ए बी सी डी इसी बात को कह रहे हैं, ए बी से सी बड़ा हो गया, तीसरे नंबर पर है, और डी से छोटा है तो डी चौथे नंबर पर है, तो डी सी से बड़ा हो गया। लेकिन चलिए हम उस पर नहीं जाते कि कुछ तरह से संबंधित ये प्रश्न है नहीं। दूसरा है स्टेटमेंट 2, डी सबसे बड़ा है, डी सबसे बड़ा है, बिल्कुल सिंपल सा स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट 3 है कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा, यहां आपको उल्टा थोड़ा दिखाई देगा ना, ए जो है वो बी से बड़ा है, यानी कि इसमें आपको बिल्कुल एक रूपता ऐसे नहीं दिखाई दे रही कि ए बी सी डी उसी तरह से इनकी सीनियरिटी हो, नॉट एट ऑल। और खैर, हमको उससे मतलब भी नहीं है। ये तीन स्टेटमेंट है। अब आप शुरू में स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको कोई पल्ले नहीं पड़ेगा और उसकी जरूरत भी नहीं है। हम प्रश्न देखते हैं और प्रश्न के हिसाब से फिर हम इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे कि वो चाह क्या रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हम विकल्प का चयन करेंगे। सिंपल सी बात है, लेकिन ये तभी हो सकेगा जब आपका नियंत्रण अपने मस्तिष्क पर होगा, अदरवाइज आप गड़बड़ा जाएंगे, और हैं बहुत सरल ये, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसे प्रश्नों का चयन किया है। अब देखिए कि प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया है, ए बी सी और डी में से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है। लेकिन जब आप विकल्प पढ़ेंगे तो उसमें विकल्प में यह नहीं दिया है कि ए बी सी डी, नो, अलग तरीके के विकल्प हैं। सबसे छोटा कौन है, फिर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर लिखे हुए कथनों और प्रश्न के संदर्भ में सही है। तीन स्टेटमेंट है। अब विकल्प देखिए, तब आपको पता लगेगा कि क्या करना है। और प्लीज, मैं चाहूंगा कि आप सब के पास डेफिनेटली प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होंगे और ऐसे प्रश्नों को हल करने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए, आप बिल्कुल हल कर लेंगे और सही सही हल कर लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अब देखिए ए क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट वन एस वन अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न क्या पूछा है, इनमें सबसे छोटा कौन है, ए बी सी डी में सबसे छोटा कौन है। स्टेटमेंट वन क्या अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, सी डी से छोटा है ए और बी से बड़ा है, क्या इसी के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि सबसे छोटा कौन है, नहीं बता सकते, बताने की कोशिश कीजिए। सबसे छोटा के बारे में नहीं आपको पता लग रहा है कि इसमें सबसे छोटा कौन है ना, क्योंकि जब आप सी डी से छोटा और ए बी से बड़ा है तो सबसे छोटा कौन है ये नहीं निकल रहा है, सोच करके देखिए, तो सीधी सी बात है कि ये नहीं होगा, ये पर्याप्त नहीं, क्योंकि इसी के आधार पर हम उत्तर नहीं दे सकते, कहने का मतलब ये है। फिर जो दूसरा विकल्प है वो है एस वन और एस टू एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो पहले वाला तो हमने पढ़ लिया है। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वह डी सबसे बड़ा है। अगर प्रश्न यह पूछा जाता कि सबसे बड़ा कौन है, देखिए तब स्टेटमेंट टू ही अपने आप में पर्याप्त होता कि सबसे बड़ा, कह रहे हैं डी सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, खत्म हो गई बात। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है वो है सबसे छोटा और जो स्टेटमेंट टू है वो बात कर रहा है सबसे बड़े की, तो अगर हम ए वन और टू इन दोनों को भी मिला दें तो हमें उत्तर नहीं मिलेगा कि सबसे छोटा कौन है, क्योंकि हमें तलाश करना है सबसे छोटा कौन है। इसके बाद सी विकल्प में दिया है एस टू और एस थ्री एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, एस टू और एस थ्री। तो जब आप एस टू और एस थ्री में देखेंगे तो एस में डी की चर्चा की गई है, एस थ्री में ए और बी की चर्चा की गई है, तो सी के बारे में तो हमें पता ही नहीं लग रहा है कि सी की क्या स्टेटस है, सी की क्या स्थिति है, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम डी को देखते हैं कि एस वन और एस थ्री एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए सबसे छोटा, तो एस वन में क्या दिया है, सी डी से छोटा पर ए और बी से बड़ा है, यानी कि ए बी सी डी में सी सबसे छोटा है, और इसके बाद सी में दे दिया ए बी से बड़ा है, ए जो है वो बी से बड़ा है। जब आप इन्हें निकाल लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि सबसे छोटा कौन है। हालांकि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं मैं समझ सकता हूं कि आपको थोड़ा सा ये घुमावदार लगा होगा, दोस्तों डेफिनेटली घुमावदार थोड़ा सा है, लेकिन आप जिस तरीके से मैंने अभी बताया है उस तरीके से जानने और इसे पकड़ने की कोशिश कीजिए। कल मैं इसी से संबंधित एक दो प्रश्न और लूंगा और उन पर बातचीत करूंगा और तब शायद आप इसे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम है, महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, अभिलाषा कुमारी, आयुषी अग्रवाल, शिवम कुमार निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, आकाश नई दिल्ली से और भास्कर शर्मा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।